एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, एकत्र ज्ञान गोष्ठी में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान।
आज हम एक बहुत ही अहम किताब पर बात करने वाले हैं,
साली हॉलैंड की सोशल वर्क।
ये किताब ना हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जिसके बारे में हम शायद ज्यादा सोचते नहीं।
हाँ, मतलब सोशल वर्क का पेशा।
बिल्कुल, उन लोगों का काम जो समाज के सबसे मुश्किल हालात में फंसे लोगों की मदद करते हैं, और सिर्फ मदद ही नहीं बल्कि एक बेहतर, ज्यादा न्याय वाला समाज बनाने की कोशिश भी करते हैं।
हाँ, और ये किताब आज के जमाने में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने चारों तरफ इतनी सारी समस्याएं देखते हैं। गरीबी है, असमानता है, मेंटल हेल्थ की दिक्कतें हैं, बच्चों बुजुर्गों की देखभाल के मुद्दे।
सही कहा, और इन सब के बीच में ना सोशल वर्कर्स, सामाजिक कार्यकर्ता, वो चुपचाप अपना काम कर रहे होते हैं। तो ये किताब उनके काम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो चुनौतियां हैं और उनका असली मकसद क्या है, उसे समझने में मदद करती है। ये सिर्फ हेल्प करने से कहीं ज्यादा है।
तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं लेखिका से। सैली हॉलैंड, ये कौन है और इनकी बात क्यों सुने हम? मतलब क्या खास है इनके नजरिए में?
देखिए, सैली हॉलैंड सिर्फ कोई किताबी प्रोफेसर नहीं है। हाँ, वो कार्डिफ यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क की प्रोफेसर है, जानी मानी आवाज़ है इस फील्ड में। लेकिन जो चीज़ उन्हें अलग बनाती है वो है उनका ज़मीनी तजुर्बा।
अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस।
हाँ बिल्कुल, उन्होंने सालों तक सीधे फील्ड में काम किया है, जैसे बच्चों की देखभाल, परिवारों के साथ काम करना, जो कि बहुत मुश्किल एरियाज होते हैं।
ओ, तो मतलब थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों का मेल है इनके पास।
ये तो बड़ी बात है, अक्सर ऐसा होता नहीं है। सही कहा, बहुत बार अकादमिक दुनिया और जमीनी हकीकत में एक गैप सा रह जाता है, लेकिन हॉलैंड के साथ ऐसा नहीं है, और यही चीज उनके लेखन को ताकत देती है। वो सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या होना चाहिए, वो ये भी समझती हैं कि असल में होता क्या है, क्या मुश्किलें आती हैं, और उनकी बातों में ना सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए एक पैशन झलकता है।
अच्छा,
और वो हमेशा उन लोगों के नज़रिए को बहुत अहमियत देती हैं जो ये सेवाएं लेते हैं, जिन्हें हम सर्विस यूज़र कहते हैं। ये उनके काम को बहुत मानवीय बनाता है।
तो अब किताब पे आते हैं। सोशल वर्क ये है क्या? मतलब मोटी मोटी बात क्या है इसमें?
देखिए, किताब सोशल वर्क को सिर्फ एक मदद करने वाला पेशा नहीं मानती। हॉलैंड इसे एक ब्रिज, एक पुल की तरह देखती हैं।
बोल, कैसा पुल?
एक तरफ है लोगों की निजी जिंदगी की मुश्किलें, तकलीफें, और दूसरी तरफ है समाज की बड़ी नीतियां, सिस्टम। ये किताब इन दोनों के बीच पुल का काम करती है। ये नए लोगों के लिए एक इंट्रोडक्शन जैसा है, और जो लोग पहले से इस फील्ड में हैं उनके लिए भी ये सोचने और रिफ्लेक्ट करने के लिए बहुत कुछ देती है।
और इसका मेन आर्ग्यूमेंट क्या है? मतलब क्या कहना चाह रही हैं हॉलैंड?
हॉलैंड का मानना है कि असरदार सोशल वर्क के लिए ना दो चीजों पर एक साथ फोकस करना पड़ता है।
दो चीजें?
हाँ, पहला, जिन लोगों को जरूरत है उन्हें सीधी प्रैक्टिकल मदद देना,
ठीक है,
और दूसरा, उन बड़ी सामाजिक आर्थिक वजहों को, मतलब जो सिस्टम की प्रॉब्लम है जिनकी वजह से ये दिक्कतें पैदा होती हैं या बनी रहती हैं, उनको समझना और उन पर काम करना।
अच्छा, यानी सिर्फ व्यक्ति की प्रॉब्लम नहीं देखनी बल्कि पूरे सिस्टम को देखना है, जड़ तक जाना है।
बिल्कुल, सिर्फ लक्षण का इलाज नहीं, बीमारी की जड़ तक जाने की बात। और वो कहती है कि सोशल वर्क एक ही वक्त में मानवीय रिश्ता बनाने की कला भी है।
आर्ट?
हाँ, आर्ट, और साथ ही सोच समझकर दखल देने का विज्ञान भी, मतलब दिल और दिमाग दोनों चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी बात जो हॉलैंड हाईलाइट करती हैं वो है इस काम के अंदर का एक बुनियादी तनाव, एक विरोधाभास।
विरोधाभास? कैसा विरोधाभास? सोशल वर्क में?
हाँ, ये है देखभाल यानी केयर और सामाजिक नियंत्रण यानी सोशल कंट्रोल के बीच का तनाव।
केयर वर्सेस कंट्रोल, थोड़ा समझाएंगी?
मतलब एक तरफ तो सोशल वर्कर की जिम्मेदारी है लोगों की मदद करना, उनका ख्याल रखना, उन्हें सपोर्ट करना,
ठीक,
हाँ वो तो है ही,
लेकिन दूसरी तरफ समाज के नियमों और कानूनों के तहत उन्हें कभी कभी दखल भी देना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है,
या लोगों की जिंदगी में कड़े फैसले लेने का अधिकार और जिम्मेदारी भी होती है।
जैसे कोई उदाहरण?
जैसे मान लीजिए किसी परिवार की मदद कर रहे हैं लेकिन पता चलता है कि वहाँ बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, तो एक तरफ आप परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं, वो केयर है, पर दूसरी तरफ आपको शायद अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना पड़े बच्चे की सुरक्षा के लिए, ये कंट्रोल है।
ओह, ये तो वाकई बहुत मुश्किल संतुलन है।
बिल्कुल, और हॉलैंड कहती हैं कि ये कोई कमी नहीं है, ये इस पेशे की पहचान है। इस तनाव को समझे बिना हम सोशल वर्क को समझ ही नहीं सकते। ये जैसे एक अनदेखी रस्सी पर चलना है।
हम बात तो गहरी है, तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। किताब इस पेशे की नींव और पहचान के बारे में क्या बताती है, इसकी जड़ें कहाँ हैं?
किताब बताती है कि इसकी जड़ें हमें मिलती हैं 19वीं सदी के चैरिटी आंदोलनों में और सेटलमेंट हाउस जैसी जो पहले हुई थी उसमें।
अच्छा, जैसे जीन एडम्स, मैरी रिचमंड का नाम आता है शायद?
हाँ बिल्कुल, इन लोगों ने सिर्फ दया भाव से आगे बढ़कर एक तरह से व्यवस्थित तरीके से मदद करने पर जोर दिया, और यहीं से एक बहुत जरूरी सोच निकली, व्यक्ति परिवेश परिप्रेक्ष्य, पर्सन इन एनवायरनमेंट।
व्यक्ति परिवेश परिप्रेक्ष्य, ये थोड़ा भारी शब्द लग रहा है, इसका मतलब क्या है आसान भाषा में?
हाँ, सुनने में थोड़ा अकादमिक लगता है पर आइडिया सीधा सा है। इसका मतलब है कि किसी भी इंसान को समझने के लिए सिर्फ उसको अकेले में मत देखो, उसको उसके पूरे माहौल के साथ देखो, उसका परिवार, उसका समाज, उसकी आर्थिक हालत, उसकी संस्कृति, उसके आसपास क्या मौके हैं, क्या मुश्किलें हैं, ये सब कुछ।
अच्छा, मतलब इंसान अकेला नहीं है, उसके आसपास का पूरा इकोसिस्टम भी देखना है।
बिल्कुल, जैसे अगर कोई बच्चा स्कूल में अच्छा नहीं कर रहा तो सिर्फ बच्चे पर फोकस करना काफी नहीं, देखना होगा कि घर का माहौल कैसा है, क्या मोहल्ले में गरीबी या हिंसा है, क्या स्कूल में सही सपोर्ट मिल रहा है। व्यक्ति और उसका परिवेश दोनों जरूरी हैं।
समझ गया, इंसान को उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना,
और इसी बुनियाद पर वो केयर वर्सेस कंट्रोल वाला विरोधाभास टिका है जिसकी बात हम कर रहे थे।
एग्जैक्टली,
और हॉलैंड कहती हैं कि ये विरोधाभास ही इस काम की डिफाइनिंग फीचर है, इसकी पहचान है। सोशल वर्कर को मददगार भी होना है और जरूरत पड़ने पर नियमों के तहत नियंत्रण भी रखना है। आसान नहीं है, पर यही सच्चाई है इस काम की।
तो फिर इस मुश्किल काम में, इस संतुलन को साधने में सबसे ज्यादा क्या चीज मदद करती है, क्या कहती हैं हॉलैंड?
हॉलैंड के मुताबिक वो है मानवीय संबंध, रिलेशनशिप। वो इस बात पर बहुत जोर देती हैं कि सोशल वर्कर और सर्विस लेने वाले के बीच जो प्रोफेशनल रिश्ता बनता है ना,
हाँ,
वही बदलाव का सबसे पावरफुल जरिया है। ये किसी भी नियम कानून की किताब, किसी फॉर्म या चेकलिस्ट से ज्यादा असरदार है।
लेकिन क्या ये हमेशा हो पाता है? मेरा मतलब है, आजकल तो सोशल वर्कर्स पर इतना प्रेशर होता है, केस लोड इतना ज्यादा होता है, टारगेट्स पूरे करने होते हैं, तो क्या वाकई वो हर एक के साथ इतना गहरा मानवीय रिश्ता बना पाते हैं?
सवाल बहुत सही है, और हॉलैंड भी इस चुनौती को मानती हैं, खासकर आजकल जो मैनेजरियलिज्म का जोर है।
हाँ, वो आंकड़ों वाला खेल।
बिल्कुल, जहां काम को बस नंबर्स और टारगेट से नापा जाता है। लेकिन हॉलैंड का तर्क यही है कि भले ही मुश्किल हो, कोशिश यही होनी चाहिए, क्योंकि असली बदलाव भरोसे से, सहानुभूति से, आपसी समझ से ही आता है।
और इस रिश्ते में जरूरी क्या है? मतलब दोस्ती तो नहीं है ये?
नहीं, बिल्कुल दोस्ती नहीं, ये एक प्रोफेशनल रिश्ता है। इसके जरूरी तत्व हैं सहानुभूति दिखाना, एक्टिव लिसनिंग, भरोसा कायम करना, ट्रस्ट बिल्डिंग, और साथ ही प्रोफेशनल बाउंड्रीज का ध्यान रखना। ये एक मकसद के साथ बनाया गया रिश्ता है।
और ये किन मूल्यों, किन वैल्यूज पर टिका होता है?
ये सोशल वर्क की जो कोर वैल्यूज हैं उन पर टिका होता है, जैसे सेवा का भाव, सामाजिक न्याय, हर इंसान की गरिमा और इज्जत, मानवीय रिश्तों की अहमियत, ईमानदारी और अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल। इन मूल्यों के बिना ये रिश्ता सिर्फ एक औपचारिकता रह जाएगा।
तो ठीक है, मानवीय रिश्ता जरूरी है, लेकिन सिर्फ अच्छी नीयत और रिश्ता बनाने से तो काम नहीं चलेगा ना, इसके लिए किस तरह का ज्ञान, क्या स्किल चाहिए?
हाँ बिल्कुल सही, सोशल वर्क सिर्फ दिल का काम नहीं है, दिमाग का भी है। ये एक सीरियस एकेडमिक और प्रैक्टिकल फील्ड है। इसमें कई अलग अलग डिसिप्लिन्स, कई विषयों का ज्ञान जरूरी होता है।
जैसे?
जैसे सिस्टम थ्योरी, यानी समाज कैसे काम करता है, इकोलॉजिकल नजरिया, मतलब व्यक्ति और उसके माहौल का रिश्ता, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कानून, नैतिकता, ये सब। ये एक तरह से इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, कई चीजों को मिलाकर बनता है।
और आजकल एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस यानी EBP की बहुत बात होती है, सबूतों पर आधारित काम, उसके बारे में हॉलैंड क्या सोचती हैं?
हॉलैंड उसका महत्व मानती हैं, लेकिन उनका नजरिया बैलेंस्ड है। वो कहती हैं कि रिसर्च जरूरी है, उससे पता चलता है कि कौन से तरीके शायद ज्यादा कारगर हों।
हाँ,
लेकिन हर केस अलग होता है, हर इंसान अलग होता है, तो रिसर्च के साथ साथ सोशल वर्कर का अपना तजुर्बा, उसकी प्रैक्टिकल विजडम, और सबसे ज़रूरी, वो जो सर्विस यूज़र है, उसकी अपनी समझ और ज़रूरतें, इन सबको मिलाकर फ़ैसला लेना होता है।
मतलब सिर्फ किताबी फार्मूला काम नहीं करेगा?
नहीं, सिर्फ रिसर्च के आधार पर बने बनाए प्रोटोकॉल हर किसी पर फिट नहीं होते। इसमें मानवीय सूझबूझ, जजमेंट की बहुत ज़रूरत है।
और स्किल्स, हुनर क्या क्या चाहिए?
अरे बहुत सारे, जैसे किसी सिचुएशन का पूरा असेसमेंट करना, और ये सिर्फ फॉर्म भरना नहीं होता, लोगों से सही ढंग से कम्युनिकेट करना, मुश्किल घड़ी में सही तरीके से इंटरवीन करना, लोगों के हक के लिए आवाज़ उठाना यानी एडवोकेसी करना, और हाँ, अपनी रिपोर्ट साफ साफ लिखना भी एक स्किल है।
और इसकी कोई प्रक्रिया होती है, मतलब स्टेप्स होते हैं काम करने के?
हाँ, एक तरह की प्रोसेस होती है, जैसे पहले लोगों से जुड़ना, एंगेजमेंट, फिर उनकी स्थिति को समझना, असेसमेंट, मिलकर प्लान बनाना, प्लानिंग, उस पर काम करना, इंटरवेंशन, देखते रहना कि क्या हो रहा है, मॉनिटरिंग, फिर असर का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन, और आखिर में उस प्रोफेशनल रिश्ते को सही तरीके से खत्म करना, टर्मिनेशन।
अच्छा, अब आते हैं नैतिकता और सामाजिक न्याय पर। आपने शुरू में कहा था कि हॉलैंड की किताब का बहुत अहम हिस्सा है।
हाँ बिल्कुल, ये इस किताब की कह सकते हैं आत्मा है। हॉलैंड साफ कहती हैं कि सोशल वर्क कभी भी न्यूट्रल या वैल्यू फ्री नहीं हो सकता, ये स्वभाव से ही एक नैतिक और राजनीतिक काम है।
नैतिक और राजनीतिक, ये थोड़ा और समझाएंगी प्लीज? नैतिक तो समझ आता है, पर राजनीतिक कैसे?
नैतिक इसलिए क्योंकि सोशल वर्कर्स को लगातार मुश्किल नैतिक दुविधाएं, एथिकल डायलेमास का सामना करना पड़ता है, सही और गलत के बीच चुनना पड़ता है।
जैसे?
जैसे क्लाइंट की प्राइवेसी बनाए रखनी है, या अगर कोई खतरा दिख रहा है तो दूसरों को बताना है, किसी की मर्जी का सम्मान करना है, या उसकी सुरक्षा के लिए दखल देना है, ये आसान फैसले नहीं होते।
बात तो है, और राजनीतिक क्यों?
राजनीतिक इसलिए क्योंकि सोशल वर्क से व्यक्तियों की मदद करने तक ही सीमित नहीं है, ये उन बड़े सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सिस्टम से जुड़ा है जो लोगों की जिंदगी पर असर डालते हैं, जो असमानता या अन्याय पैदा करते हैं। सोशल वर्कर के काम का असर इन सिस्टम्स पर भी पड़ता है, और ये सिस्टम्स उसके काम पर असर डालते हैं।
तो इन मुश्किल नैतिक दुविधाओं से निपटने के लिए क्या जरूरी है?
सबसे जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब अपनी सोच, अपने पूर्वाग्रहों को समझना, और दूसरी चीज है कल्चरल ह्यूमिलिटी, यानी ये मानना कि हम किसी दूसरी संस्कृति को पूरी तरह कभी नहीं समझ सकते, इसलिए लगातार सीखते रहना होगा, दूसरों से समझना होगा। और साथ ही पावर डायनामिक्स को समझना, यानी सोशल वर्कर और सर्विस लेने वाले के बीच जो पावर का असंतुलन होता है, उसके बारे में सचेत रहना।
और सामाजिक न्याय का क्या? क्या वो अलग से कोई काम है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। हॉलैंड के लिए सामाजिक न्याय कोई ऑप्शनल एक्स्ट्रा चीज नहीं है, ये सोशल वर्क की बुनियाद है, उसका बेस है। इसका मतलब है उन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को पहचानना और चैलेंज करना जो अन्याय पैदा करती हैं, जैसे गरीबी, भेदभाव, उत्पीड़न।
अच्छा, मतलब जड़ पर काम करना।
हाँ, इसे ऐसे समझिए, अगर नदी में बार बार लोग डूब रहे हैं तो सिर्फ उन्हें बाहर निकालना काफी नहीं है।
हाँ,
हमें ये भी देखना होगा कि वो नदी में गिर ही क्यों रहे हैं, क्या पुल टूटा है, क्या कोई धक्का दे रहा है। सोशल वर्क सिर्फ डूबते को बचाना नहीं, बल्कि पुल ठीक करना या उस अन्याय को रोकना भी है जो लोगों को नदी में गिरा रहा है।
वाह, ये बहुत पावरफुल बात कही आपने। किताब शायद प्रैक्टिस के अलग अलग एरियाज और आज की चुनौतियों पर भी बात करती होगी।
हाँ जरूर, सोशल वर्क का दायरा बहुत बड़ा है, बच्चों की सुरक्षा, मेंटल हेल्थ, अस्पतालों में हेल्थ केयर सोशल वर्क, बुजुर्गों की देखभाल, जेरियाट्रिक सोशल वर्क, नशा मुक्ति, एडिक्शन सर्विसेज, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, स्कूलों में, लिस्ट बहुत लंबी है।
और ये काम अलग अलग लेवल पे होता है ना?
हाँ, सीधे व्यक्तियों या परिवारों के साथ उसे माइक्रो लेवल कहते हैं, समुदायों या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वो मेजो लेवल है, और पॉलिसी बदलने या बड़े पैमाने पर वकालत करने के लिए वो मैक्रो लेवल है।
और आज के जमाने की बड़ी चुनौतियां क्या हैं इस फील्ड में?
एक बहुत बड़ी चुनौती है नव उदारवाद और मैनेजरियलिज्म का बढ़ता असर।
अच्छा, ये क्या है?
इसका मतलब है कि सोशल वर्क में भी ना कम खर्च में ज्यादा नतीजे दिखाने का दबाव बहुत बढ़ गया है। इससे अक्सर फॉर्म भरने, टारगेट पूरा करने और आंकड़ों पर ज्यादा ध्यान चला जाता है,
और इंसानियत पीछे छूट जाती है।
हाँ, कुछ हद तक रिश्तों पर, काम की गहराई पर फोकस कम हो जाता है, काम का बोझ बहुत है, फंड की कमी रहती है, बदलती डेमोग्राफी है, टेक्नोलॉजी का असर है, ये सब भी नई चुनौतियां हैं। इसलिए लगातार सीखते रहना, अडेप्ट करने और नए तरीके खोजने की जरूरत बनी रहती है।
तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अगर हम इस पूरी बातचीत से कुछ मेन मैसेजेस या थीम्स निकालना चाहें तो वो क्या होंगे, सबसे अहम बातें?
मेरे ख्याल से सबसे पहली और सबसे यूनिक थीम तो वही है, केयर वर्सेस कंट्रोल का पैराडॉक्स, देखभाल बनाम नियंत्रण का विरोधाभास।
हाँ, वो तो है।
ये इस काम की पहचान है, एक ही सिक्के के दो पहलू। सोशल वर्कर को दोनों रोल निभाने पड़ते हैं और ये संतुलन साधना ही असली चुनौती है।
ठीक है, पहला ये, दूसरा?
दूसरा है रिलेशनशिप बेस्ड प्रैक्टिस का महत्व, यानी नियम कायदों से ज्यादा जरूरी है वो मानवीय रिश्ता जो भरोसे और सहानुभूति पर टिका हो। असली बदलाव वहीं से आता है।
ये आज के मशीनी सिस्टम के लिए जरूरी रिमाइंडर है। तीसरा,
सोशल जस्टिस की अनिवार्यता, ये कि सोशल वर्क सिर्फ लोगों की निजी प्रॉब्लम्स को ठीक करना नहीं है, बल्कि उन बड़ी सामाजिक नाइंसाफियों के खिलाफ लड़ना भी है जो इन प्रॉब्लम्स की जड़ में है। ये काम नैतिक है, राजनैतिक है, न्यूट्रल नहीं।
सही।
चौथा है
कॉम्प्लेक्सिटी और अनिश्चितता में फैसले लेना। सोशल वर्क अक्सर विकेड प्रॉब्लम से डील करता है, मतलब ऐसी उलझी हुई समस्याएं जिनका कोई सीधा साधा हल नहीं होता।
हाँ, जैसे आपने ट्रैफिक जैम का उदाहरण दिया था। बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन में सोशल वर्कर को अपनी सूझबूझ, तजुर्बे और हिम्मत से काम लेना पड़ता है। कोई रेडीमेड जवाब नहीं होता।
और पांचवा
है वही व्यक्ति और उसका परिवेश वाला नजरिया। किसी भी प्रॉब्लम को सिर्फ व्यक्ति की कमी मानकर नहीं चलना, बल्कि उसके पूरे माहौल, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना।
ये सारे थीम्स वाकई बहुत सोचने पर मजबूर करते हैं। किताब में जरूर कुछ ऐसी लाइनें या विचार होंगे जो इन सब का निचोड़ हो।
हाँ, हॉलैंड के कुछ आइडियाज हैं जो पूरी किताब का सार कह सकते हैं। जैसे एक विचार है, सोशल वर्क सिर्फ लोगों को उनकी मुश्किल परिस्थितियों से निपटने में मदद करना नहीं है, बल्कि उन परिस्थितियों को बदलना भी है जो निपटने की जरूरत पैदा करती हैं।
वाह, मतलब जड़ पर काम करो।
बिल्कुल। दूसरा विचार, प्रोफेशनल रिश्ता ही असल हस्तक्षेप है। प्रक्रियाएं बदलाव नहीं ला सकती, विश्वास और सहानुभूति ला सकती हैं।
इंसानियत पहले।
बिल्कुल
ठीक है। और
सामाजिक न्याय पर उनका कहना है, सामाजिक न्याय कोई सजावटी चीज नहीं है, ये सोशल वर्क के हर पहलू की नींव है,
बुनियाद है। समझ गया।
एक और अहम बात, संस्कृति पर। अलग अलग कल्चर्स को समझना कोई मंजिल नहीं है, बल्कि लगातार सीखने और खुद पर सोचने की एक यात्रा है। मतलब हम कभी एक्सपर्ट नहीं बनते, सीखते रहते हैं।
ये विनम्रता जरूरी है। और आखिर में,
असरदार सोशल वर्क के लिए दिल यानी करुणा, दिमाग यानी ज्ञान और हाथ यानी कौशल, तीनों का एक साथ मिलना जरूरी है।
दिल, दिमाग और हाथ, तीनों जरूरी हैं। ये विचार तो सिर्फ सोशल वर्कर्स के लिए नहीं, हम सबके लिए भी काम के हैं ना, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में।
हाँ बिल्कुल। जैसे हम अपनी सोच, अपने जो बायस हैं, पूर्वाग्रह हैं, उन्हें समझने की कोशिश कर सकते हैं, दूसरों के लिए ज्यादा एम्पैथी डेवलप कर सकते हैं,
और रिश्तों में भी मदद मिल सकती है।
हाँ, और काम की जगह पर भी, ऑफिस में अपने कलीग्स या कस्टमर्स को बेहतर ढंग से समझने में वो व्यक्ति परिवेश वाला आइडिया काम आ सकता है।
हाँ, कि कोई परेशान है तो क्यों है, सिर्फ उसकी गलती नहीं देखनी।
बिल्कुल। और नैतिक फैसले लेने में भी ये सोच मदद कर सकती है जो हर प्रोफेशन में लेने पड़ते हैं।
और अपने आस पड़ोस, अपनी कम्युनिटी में,
वहाँ भी अगर हम अपने आसपास कोई प्रॉब्लम देखते हैं तो सिर्फ शिकायत करने के बजाय उसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, कौन लोग प्रभावित हैं, क्या हो सकता है, उन ढांचागत रुकावटों को पहचानना जो बदलाव को रोक रही हैं।
सही कहा। तो कुल मिलाकर इस किताब और हमारी इस बातचीत से क्या मुख्य बातें लेकर जा सकते हैं हम? आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा?
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए ना, दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस चाहिए। मतलब करुणा भी हो और सिस्टमैटिक सोच भी हो। और टिकाऊ बदलाव तभी आता है जब हम पर्सनल सपोर्ट के साथ साथ उन बड़े स्ट्रक्चरल इश्यूज पर भी काम करें जो प्रॉब्लम की जड़ है।
और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह एहसास है कि सोशल वर्क कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स और नैतिक रूप से डिमांडिंग काम है। वो केयर और कंट्रोल के बीच का बैलेंस, वो अनिश्चितता में फैसले लेना, ये वाकई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शायद हमें इस प्रोफेशन को और इसे करने वालों को और ज्यादा सम्मान और समझ देने की जरूरत है।
हाँ, ये तो है।
और ये भी कि मानवीय रिश्ते कितने पावरफुल हो सकते हैं, खासकर ऐसे सिस्टम्स में जो अक्सर बहुत इम्पर्सनल मतलब अव्यक्तिक हो जाते हैं।
और अंत में एक सवाल जो ये किताब हम सबके लिए छोड़ जाती है शायद, कि हम एक समाज के तौर पर इस ज़रूरी और मुश्किल काम को कितनी वैल्यू देते हैं। क्या हम उन स्ट्रक्चरल दिक्कतों को मानते हैं जिनसे सोशल वर्कर्स और उनकी मदद लेने वाले लोग रोज जूझते हैं? ये सोचने वाली बात है।
बिल्कुल सोचने वाली बात है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।